पृष्ठ संख्या 130, कविता संख्या 21, कविता सच्ची बात। कविता, बाढ़ियाँ फटे हुए बाँसों पर फहरा रही हैं और इतिहास के पन्नों पर धर्म के लिए मरे हुए लोगों के नाम। बात सिर्फ इतनी है, स्नान घाट पर जाता हुआ हर रास्ता देह की मंडी से होकर गुजरता है, और जहाँ घटित होने के लिए कुछ भी नहीं है, वहीं हम गवाह की तरह खड़े किए जाते हैं, कुछ देर अपनी ऊब में तटस्थ, और फिर चमत्कार की वापसी के बाद भीड़ से वापस ले लिए जाते हैं। व्याख्या, सच्ची बात शीर्षक कविता में इतिहास और वर्तमान के बीच दूरी को नई दृष्टि दी गई है। इतिहास और झंडे के व्यवहार और प्रतीक पर व्यंग भरे तेवर में रचनाकार धूमिल अपनी टिप्पणी करते हुए कहता है कि अब तो मनुष्य शरीरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चली है। अब तो बाड़ी बहुवचन में फटे हुए बांसों पर ऊपर लटका कर फहरा दी जाती है। झंडा का आकार अब यही बन गया है कि उसका बांस ही फटा हुआ है, और उनके पताका वस्त्र के रूप में कपड़ा ना होकर शरीर ही टंगे दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जिन्होंने जीवन अर्पित किया है, शहीद हुए हैं, उनका नाम इतिहास में प्रायः ओझल रहता है। उनके स्थान पर उन लोगों के नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहते हैं जो धर्म के लिए मरे हैं। कर्तव्य की वेदी पर मरने वाले लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दिखाई नहीं देते। किसी भी स्नान घाट पर जाओ या नहाओ, वहाँ जल होने के साथ ही शरीर का होना भी उतना ही आवश्यक है, अर्थात देह कि मंडी से गुजर कर ही स्नान घाट पर जाना होता है। सच्ची बात तो यह है कि किसी विचारधारा का अवगाहन करो, जीवन का कोई भी पक्ष क्यों ना अपनाओ, उसमें शरीर का होना अवश्यभावी है। शरीर को छोड़कर जीवन में घटित होने के लिए कुछ भी नहीं है। शरीर घाट पर ही हम या हमारी चेतना जीवन में घटित होते हुए की गवाही देती है, वहीं हम गवाह की तरह खड़े किए जाते हैं। पहले तो गवाही की प्रक्रिया में हम उबते हुए तटस्थ से बने रहते हैं, और फिर तटस्थ होने के बाद चमत्कार में निमग्न हो जाते हैं। तब हम भीड़ से वापस बुला लिए जाते हैं, अथवा चेतना में गवाह या साक्षी की स्थिति में पहुँचते ही पूरा अंतःवाह दृश्य जगत चमत्कार पूर्ण सा दिखाई देता है, अथवा अंतस्थ गवाही की स्थिति में पहुँचते ही चमत्कार की स्थिति वापस हो जाती है, अथवा तिरोहित हो जाती है, और जैसे ही चमत्कार की स्थिति समाप्त होती है, हम भीड़ से वापस हो जाते हैं, अर्थात भीड़ की मानसिकता से मुक्ति मिल जाती है। तब हम अंतस्थ साक्षी ही बने रह जाते हैं। इन पंक्तियों में रचनाकार विचारक अथवा दार्शनिक किसी मनः स्थिति में मनुष्य की जागतिक मानसिकता को रेखांकित करता हुआ सा प्रतीत होता है। कविता, वक्त और लोगों के बीच सवाल शोर के नापने का नहीं है, बल्कि उस फासले का है जो इस रफ्तार में भी सुरक्षित है। वैसे हम समझते हैं कि सच्चाई हमें अक्सर अपराध की सीमा पर छोड़ आती है। आदतों और विज्ञापनों से दबे हुए आदमी का सबसे अमूल्य क्षण संदेहों में तुलता है। हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे चेहरों पर आंख के ठीक नीचे ही नाक है। व्याख्या, पृष्ठ संख्या 121। संसार या संसार के लोगों द्वारा किए गए कार्यों या बातों से उठते हुए शोर की सार्थकता निरर्थकता का आकलन करते हुए लेखक का विचार है कि अब हो रहे शोर को नापने का समय नहीं रहा, इसलिए शोर को नापने का प्रश्न नहीं है, अपितु उठ रहे शोर और जीवन की गति के बीच जो फासला है, वह आज की रफ्तार भरी स्थितियों में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु वह फासला इस गतिमय जीवन में भी सुरक्षित बना हुआ है। यह विडंबनापूर्ण स्थिति है। शायद सच्चाई को न समझने अथवा सच्चाई को एक न मानने के कारण ऐसा हुआ है। लेखक के विचार में यह समझना भी गलत नहीं है कि सच्चाई की तलाश करते करते हम निष्कर्ष रूप में किसी न किसी अपराध की सीमा पर पहुंच जाते हैं। आदमी के जीवन की विवशता यह है कि वह अपना सारा जीवन अपनी आदतों और सूचना समाचार या विज्ञापनों के प्रभाव से दबा पड़ा रहता है। लेखक की दृष्टि में उसके इस विवश दबे हुए जीवन का सबसे मूल्यवान वह क्षण या समय है जब वह संदेहों के बीच से गुजरता है। संदेह जनित प्रश्नों से जब वह अपने को तोलता है, तभी उसकी आदतों और विज्ञापनों से दबे हुए मन में प्रतिष्ठित ईमान के किले का चोर दरवाजा उसे दिखाई देता है। अर्थात संदेहों की नोक पर ही मनुष्य का अंधविश्वास शिथिल होता है, क्योंकि हर ईमान के किले का चोर दरवाजा किसी गुलशन अथवा सुगंधित दिशा की ओर नहीं खुलता। वह चोर दरवाजा संडास के निकट ही कहीं खुलता है, जहाँ दुर्गंध ही दुर्गंध या गंदगी ही होती है। बाहर से जो दृष्टियाँ प्रवाहित नैतिकता की धारा के रूप में इतनी जीवंत दिखाई देती हैं, वही अंदर कितनी कीचड़ भरी हैं। यह कितना भद्दा मजाक सा लगता है कि देखने और सूंघने में हमेशा अंतर बना रहता है। प्रवाहित नैतिकता अर्थात बाहर से दिखने वाले नैतिक कार्य देखने में कितने ईमानदार अथवा ईमान सहित दिखाई देते हैं, सूंघने पर इन्हीं के निकट दुर्गंध का अनुभव होता है। पर आदमी क्या करे, प्रकृति ने उसके चेहरों पर यदि ऊपर आंखें बनाई हैं तो उन्हीं के नीचे नाक का भी सृजन किया है। अर्थात देखने वाली दृष्टि को सूंघने वाली नाक का भी पूरा उपयोग करना चाहिए। बाहर से जो दिखाई देता है सूंघने पर वह बस उतना ही अथवा वैसा ही नहीं है।